ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के रविवार की श्रीमद् भागवतम क्लास में। श्रृंखला चल रही है गोवर्धन लीला से शिक्षाएं, और आठ शिक्षाओं में से प्रथम शिक्षा पर हम हैं। भगवान ने गोवर्धन धारण किया, देवराज इंद्र का अभिमान दूर करने हेतु। और हमारे पिछले सिटिंग में हम इस शीर्षक पर चर्चा कर रहे थे, हाउ टू सेलिब्रेट अदर्स सक्सेस। देवराज इंद्र जो नहीं कर पाए उस समय जब उनको करना था, सारे ब्रजवासी गोवर्धन का गुणगान करते हुए, गोवर्धन पूजा करते हुए, गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए उत्सव में भाग लिए, केवल देवराज इंद्र। हालांकि कवि कर्णपुर कहते हैं कि जितने अन्य देवता 33 करोड़ देवता वो सब भी गोवर्धन पूजा में लगे हुए, इन सारे 33 करोड़ देवताओं में से केवल इंद्र वो उस उत्सव में भाग नहीं लिए। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि क्यों वो भाग नहीं ले पाए, क्योंकि सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान के ऊपर उनको ऐसा लगा कि ठेस पहुंचाई, उनके अभिमान को ठेस पहुंचाई। इसलिए तो इसके ठीक विपरीत जो वैष्णव सिद्धांत ये हमें सिखाता है कि हम कैसे भगवान, भगवान के भक्त, उनकी सफलता में आनंद ये ढूंढे। किसका आनंद? उनका आनंद नहीं, हमारा आनंद। उनकी सफलता में या भगवान की सफलता में, भगवान के उत्सव में भगवान का आनंद तो है ही, भगवान तो परमानंद है। और भक्तों की सफलता में भक्तों का आनंद तो है ही, परंतु क्या हम हमारा आनंद उसके अंदर ढूंढ रहे हैं? क्या क्या हम उसमें आनंदित हो रहे हैं? ये महत्वपूर्ण है जानना। तो हमने शरणागति और प्रेम इसकी परिभाषा कि जब तक हमारे अंदर शरणागति नहीं है, पूर्ण शरणागति नहीं है भगवान के प्रति, जब तक पूर्ण प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, तब तक हम भगवान के और भगवान के भक्तों की सफलता में आनंद नहीं ग्रहण कर सकते। और यही है हमारे परिवर्तन का लक्षण। यदि हमें हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है, चेंज, तो वो परिवर्तन जब तक कि प्रेममय शरणागति हम नहीं अपने जीवन में अपनाते, तब तक वो परिवर्तन हासिल नहीं कर सकते। तो परिवर्तन के हेतु हमने ये दो श्लोक भागवत के दशम स्कंध से लिए, जहां भगवान श्री कृष्ण 7 वर्षीय अपने पिता से कह रहे हैं और जितने वरिष्ठ गोपगण उन सबको ये प्रस्ताव उनके सामने रख रहे हैं कि हमें इंद्र पूजा के बदले गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और क्यों ये दो श्लोक हम ले रहे हैं, क्योंकि इन दो श्लोकों में जो नंद महाराज और सारे ब्रजवासी गण उनकी जो शरणागति है वो दिखती है कि तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने जो तर्क वितर्क रखे, कवि कर्णपुर कहते हैं कि उनसे कोई सरोकार नहीं था नंद महाराज को, तात्पर्य में भी हम पढ़ेंगे इन श्लोकों के, बहुत से तर्क वितर्क भगवान ने रखे परंतु नंद महाराज उन तर्क वितर्कों से कन्विंस नहीं हुए। कर्म मीमांसा, भगवान ने इंद्र पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए इसके लिए कर्म मीमांसा ये फिलॉसफी वहां पर प्रस्तुत की, जो कि नास्तिकवाद है कर्म मीमांसा। यहां तक भगवान इंद्र पूजा रोकना चाहते थे कि भगवान ने स्वयं अपने मुख से कर्म मीमांसा नंद महाराज के सामने प्रस्तुत किया, इसकी आवश्यकता नहीं थी। परंतु हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान नंद महाराज के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी वो फिलॉसफी सुनाने की, परंतु इंद्र उनको दिखाना चाहते थे भगवान कि देखो तुम्हें जो इतना अभिमान है अपने ऊपर और जो तुम्हारी इतनी पूजा हो रही है उसको लेकर, तो तुम्हारे अभिमान को चूर करने के लिए मैं नास्तिकवाद सुनाने के लिए भी तत्पर हूं। आई विल टेक एवरी सिंगल मेजर टू वैंक्विश योर फॉल्स प्राइड, इवन इफ इट टेक्स टू प्रीच एथिज्म। तो इसलिए तो प्रश्न ये है कि फिर नंद महाराज वो कन्विंस कैसे हुए। नंद महाराज कन्विंस हुए क्योंकि उनका जो स्वाभाविक प्रेम है भगवान के प्रति, उन्होंने केवल ये देखा कि भाई इतना, जब आप इतना सब कुछ सुना रहे हो, ये कारण के वजह से, वो कारण के वजह से, कर्म मीमांसा के वजह से, मुझे केवल ये दिख रहा है कि आपको गोवर्धन पूजा करानी है, एज सिंपल एज दैट। क्या दिख रहा है कि आपको गोवर्धन पूजा करानी है, और मुझे ये दिख रहा है कि गोवर्धन पूजा में आपकी प्रसन्नता दिख रही है। तो पूर्ण शरणागति क्या है कि जहां भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हो वो हम करें, वो है पूर्ण शरणागति, और वही यहां पर इन दो श्लोकों में समझ में आ रही है। तो श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 24, इस अध्याय का शीर्षक है गोवर्धन पर्वत की पूजा, श्लोक क्रमांक 32 एवं 33। तथा च व्यदधु सर्वं यथाह मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्तयनम् तद्रव्येण गिरिद्विजां उपरत्य बलिन सम्या आद्रताय वसं गवा गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रु प्रदक्षिणम् तथा च व्यदधु सर्वं यथाह मधुसूदन वाचयित्वा स्वस्तयनम् तद्रव्येण गिरिद्विजा उपरित्य बलिन् सम्या आद्रतायवसं गवा गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रु प्रदक्षिणम् तथा इस तरह च और व्यदधु संपन्न किया सर्वम हर बात यथा जिस तरह आह बतलाया मधुसूदन भगवान कृष्ण ने वाचयित्वा ब्राह्मणों से वाचन कराया स्वस्ति अयनम शुभ मंत्र तद द्रव्येण इंद्र यज्ञ के निमित्त एकत्र की गई सामग्री से गिरि पर्वत द्विजान तथा ब्राह्मणों को उपरित्य भेंट करके बलीन उपहार सम्यक सभी एक साथ आद्रता आदर पूर्वक यवसम घास गवाम गौओं को गोधनानी सांडों गौओं तथा बछड़ों को पुरस्कृत्य आगे करके गिरिम पर्वत की चक्रुहु की प्रदक्षिणम प्रदक्षिणा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। तत्पश्चात ग्वाल समुदाय ने मधुसूदन द्वारा प्रस्तावित सब कुछ पूरा किया। उन्होंने शुभ वैदिक मंत्रों का वाचन करने के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था की और इंद्र यज्ञ के निमित्त संग्रहित सारी सामग्री को उपभोग में लाते हुए गोवर्धन पर्वत तथा ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी। उन्होंने गौओं को भी घास दिया। तत्पश्चात गौओं सांडों तथा बछड़ों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा की। तात्पर्य, वृंदावन वासी एकमात्र भगवान कृष्ण के भक्त थे, यही उनके जीवन का सार समाहार था। भगवान के नित्य संगी होने के कारण न तो उन्हें इंद्र या किसी अनुष्ठान यज्ञ से कोई सरोकार था, नहीं वे कृष्ण द्वारा कहे गए यांत्रिक सांख्य दर्शन में रुचि रखते थे। वे तो कृष्ण से केवल प्रेम करते थे और प्रगाढ़ स्नेहवश ही उन्होंने जैसा कृष्ण द्वारा कहा गया वैसा ही किया। उनकी यह सरल प्रेम मानसिकता कोई संकीर्ण हृदयता या अज्ञान न थी, क्योंकि वे परम पूर्ण सत्य के प्रति अनुरक्त थे जो अपने में सारा ब्रह्मांड समाये हुए हैं। इस तरह वृंदावन वासियों ने निरंतर सभी सत्यों के आधारभूत सर्वोच्च अनिवार्य सत्य अर्थात स्वयं श्री कृष्ण का अनुभव किया, जो समस्त कारणों के कारण तथा इस जगत का पालन करने वाले हैं। वृंदावन वासी उन परब्रह्म की प्रेमा भक्ति से अभिभूत रहते थे, अतएव वे समस्त प्राणियों में परम भाग्यशाली परम बुद्धिमान तथा परम व्यावहारिक थे। परिवर्तन, चेंज, इस पर हमारी चर्चा चल रही थी। हरि बोल। तो चेंज या परिवर्तन, यहां पर इन दो श्लोकों में सारे ब्रजवासीगण, विशेष रूप से जो वरिष्ठ ब्रजवासीगण, उनके अंदर जो परिवर्तन वो सराहनीय है, क्योंकि अभिमान जो है वो अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग स्तर पर हमारे ऊपर आक्रमण करता है। कई बार यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्णा सभी माताओं से निवेदन है अपने सेलफोन, ये सूचना हर बार के लिए कि आप लोग अपने सेलफोन पहले से स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर मत लाइए यहां पर। तो अलग अलग स्तर पर यदि कोई केवल आयु में वृद्ध है केवल कोई यदि आयु में वृद्ध है तो उसका भी अभिमान हो जाता है किसी को, कोई जवान है उसका भी अभिमान हो जाता है उसको। तो प्रकृति इस प्रकार से कार्य करती है कि चाहे कोई किसी भी स्तर पर हो, चाहे उसके पास इतने सारे दुर्गुण भी क्यों ना हो, जैसे कि भगवान इंद्र, इनके विषय में कहा गया है, देवराज इंद्र के विषय में कहा गया है कि जब उनको एक दफा शाप मिला और वो सुअर बन गए, तो उसमें भी उनको गर्व हो रहा था कि मैं मेरे परिवार को चला रहा हूं, उसमें भी उनको गर्व था। और ब्रह्मा जी को आकर उनको बहुत कठोरता से समझाना पड़ा, दंडित करना पड़ा कि भाई ये किस प्रकार का अभिमान है तुम्हारा। तो यहां हमने पिछली बार कुछ इस परिवर्तन के ऊपर जो चर्चा की थी, एक शॉर्ट रिकैप उसका हम लेंगे कि परिवर्तन हमारे जीवन में इच्छा अनुसार और अनिच्छा अनुसार, परिवर्तन तो होना है क्योंकि भगवान ने गीता में कह दिया है अशाश्वतम, पूरा संसार भगवान ने किस प्रकार से बनाया है, अशाश्वतम। अशाश्वतम के दो अर्थ हैं, एक है कि वो अस्थाई है और दूसरा अर्थ अशाश्वतम का परिवर्तनशील, हर समय जिसके अंदर परिवर्तन होता रहे। तो यदि स्वेच्छा से हम हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाना चाहते, या यदि हम ये कहें कि अभिमान के वजह से कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहता अपने जीवन में, तो अनिच्छा से परिवर्तन तो आना है। तो समय का प्रभाव ऐसा है इस संसार में कि चाहे कोई कितना भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ले, चाहे कोई कितना भी विख्यात प्रख्यात क्यों ना हो जाए, काल का प्रभाव ऐसा है कि भौतिक स्तर पर सब कुछ रौंधा जाएगा। रौंधना समझते हैं आप, सब कुछ रौंधा जाएगा। कोई यदि ये समझे कि मैंने जो संपत्ति इकट्ठा की है, जो ऐश्वर्य इकट्ठा किया है, ये संपत्ति, ये समृद्धि, ये ऐश्वर्य, ये मेरे वजह से है, और मेरे वजह से ये अर्जित हुआ है, मेरे वजह से टिका हुआ है और मेरे ही साथ जाएगा। कई तो इस भ्रम में भी रहते हैं कि मेरे ही साथ जाए। तो काल का प्रभाव ऐसा है कि काल कैसे चकमा देता है ऐसे व्यक्तियों को, काल कैसे चकमा देता है, या तो उसके आंखों के सामने वो समृद्धि छीन लेगा, देख अब क्या करता है, उसके आंखों के सामने उसकी समृद्धि, जो भी कुछ उसका अभिमान है वो छीन लेगा, या फिर हो सकता है कि किसी पुण्य कर्म के वजह से वो उसको टिका कर रखे, वो काल को चकमा देना चाहे। तो उस ऐश्वर्य को वहां बरकरार रखेगा काल, उसे ले जाएगा। आइदर टाइम विल टेक अवे द सेंस ऑब्जेक्ट और दैट सो कॉल्ड ऑपुलेंस, और टाइम फैक्टर विल टेक दैट पर्सन अवे। एक ही बात हो गई। तो यहां पर हमने योग माया और महामाया ये कैसे कार्य करते हैं, इच्छा और अनिच्छा। तो ध्यान में रखना कि जो पहली शिक्षा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप लॉस्ट मत हो जाइएगा क्योंकि काफी समय से हम पहली शिक्षा पर ही हैं। तो परिवर्तन नम्रता से ही आएगा और देवराज इंद्र वो परिवर्तन में भाग नहीं ले रहे थे। कौन सा परिवर्तन भगवान ने कौन सा परिवर्तन लाया? पहली दफा गोवर्धन पूजा करेंगे, चलो पहले कभी गोवर्धन पूजा नहीं हुई, पहले कौन सी इंद्र पूजा चल रही थी। तो भगवान ने परिवर्तन लाया, उस परिवर्तन को केवल देवराज इंद्र वो स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि अभिमान, अभिमान के हेतु। बाकी ब्रजवासी गण तुरंत स्वीकार कर लिए नम्रता और प्रेम के वजह से। तो हम उस मुद्दे पर हैं कि स्वेच्छा से ब्रजवासी गण स्वीकार किए परिवर्तन को, तो योग माया के अधीन इतना सुंदर उत्सव वो मना पाए, और अनिच्छा से इंद्र को वहां पर आना पड़ा, है ना। सब कुछ होने के बाद जब कुछ नहीं वो कर पाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जैसे कहते हैं ना बाल भी बांका नहीं कर पाए, तो गोवर्धन लीला में देवराज इंद्र एक रेती का कण भी हिला नहीं पाए अपनी शक्ति से। और जब उनको यह एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, मैंने आग से खेला है, तब फिर शरणागत तो हुए। तो बीच में वो जब महामाया के अधीन, अभिमान के अधीन हुए, तो फिर उन्होंने उनको शरणागत करवाया। एक है शरणागत हो जाना, एक है शरणागत करवाना। तो ये हमने इसकी चर्चा थोड़ी बहुत की थी, और इसके पश्चात हमने और डिटेल में गए थे परिवर्तन हमारी व्यक्तिगत जीवन में, साधना भक्ति में, अलग अलग स्तर पर कैसे एक चुनौती बनकर आते हैं। हमारी जीवन शैली, हमारी आदतें और मत, हमारे मत। तो इसमें जो तीन स्तर हमने देखे कि जीवन शैली, इसमें परिवर्तन लाना ये डिफिकल्ट है, उसके पश्चात आदतों को बदलना, उसमें परिवर्तन लाना, ये उससे ज्यादा डिफिकल्ट, उससे ज्यादा मुश्किल। सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है कि हमारे मत को भगवान का मत बनाना, या एक मत जिसको बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आवर वननेस is to become one with the interest of Krishna. Not physically, but one in the interest of Krishna. और ये सबसे मुश्किल है ये कर पाना. इसके पश्चात जय श्री श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की. तो जो मोस्ट डिफिकल्ट यहां पर देवराज इंद्र, उनको शारीरिक रूप से ब्रजवासियों ने कोई तकलीफ नहीं दी, उनकी जीवन शैली बदली नहीं, परंतु जो उनका मत था उस पर ठेस पहुंची. तो जो ये व्यू पॉइंट्स हमारे होते हैं, हमारा जो मत होता है जिसको हम इतना कष्टा पकड़ कर रखते हैं बचपन से लेके मरते दम तक, एकदम उसको छोड़ते नहीं. श्रील प्रभुपाद वो कहानी सुनाया करते थे, दो व्यक्तियों के बीच में मतभेद, इसको बोलते हैं मतभेद. तो मतभेद क्या हुआ, कुछ काटना था तो एक व्यक्ति कहता है कि सबसे अच्छा औजार है चाकू, दूसरे ने कहा कैंची, इसने कहा चाकू, उसने कहा कैंची, चाकू कैंची, चाकू कैंची. मतभेद ऐसा मतभेद हुआ कि जो चाकू बोल रहा था, जिसका मत यह था कि चाकू है सबसे अच्छा औजार काटने के लिए, उसने धक्का मारकर इसको नदी में फेंक दिया. किसको? जो कैंची का मतदान कर रहा था. अब इसको तैरना नहीं आता, डूबते डूबते डूब रहा है, डूबते डूबते अब पूरा शरीर उसका अंदर चला गया, बस दोनों हाथ ऊपर कर कर ऐसे किया उसने. मरते मरते भी मर जाऊंगा लेकिन अपना मत नहीं छोड़ूंगा मैं, इसको बोलते हैं शुद्ध अभिमान. मार डालो, मर जाऊंगा लेकिन मैं अपना मत नहीं छोड़ूंगा. तो क्या क्या कारण है? बिकॉज इट इज माइन, क्योंकि मेरा मत है, जो कुछ मुझसे संबंधित वो विशेष होना ही चाहिए, क्योंकि मैं व्यक्ति विशेष. और फिर थोड़ा हम जब बड़ा हो जाते हैं तो क्योंकि लोग हमारे मत को स्वीकार करते हैं, जब लोग मानने लगते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा मत जो है उसमें दम है, तो फिर हमको लगता है हाँ, और ज्यादा प्रकृति उसको अहंकार को गहरा ठोक पीट के और ज्यादा उसको पक्का कर रही है. और दूसरों का मत, तो फिर इसमें भी ये तीन स्तर, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. एक तो मेरा मत और वो वाला मत जो कभी अस्वीकार नहीं हुआ है, और दूसरों का मत, सबसे मुश्किल है दूसरों का मत. तो ये जो दो श्लोक जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इसमें क्या है, कैसे ब्रजवासीगण तुरंत भगवान के मत को अपना मत बना लिए और देवराज इंद्र अकेले नहीं कर पाए. तो हमने भगवान श्री कृष्ण के जीवन से उदाहरण लिया था कि कैसे महाभारत युद्ध में और महाभारत युद्ध के पश्चात, युद्ध के पहले अर्जुन का मत कुछ और था और भगवान श्री कृष्ण पूरी गीता सुनाए, अर्जुन अब भगवान के मत को अपना मत बनाया उन्होंने. परंतु युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर महाराज वो अर्जुन की तरह विलाप करने लगे और फिर युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास ले गए. और यहां भगवान की नम्रता दिखती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन उसके उनके अधिकार उनके मत को अस्वीकार कर सकता है. परंतु भगवान ने दिखाया कि नहीं, यहां पर मैं ओ भीष्म पितामह का गुणगान कराना चाहते थे और ये भी हमारे सामने रखना चाहते थे कि चाहे हम कितने भी ऊंचे पद पर आ जाएं, कोई ना कोई रहेगा जो हमारे मत से मतभेद करेगा, कोई ना कोई तो रहेगा। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे महात्मा गांधी के विषय में कि जिनको फादर ऑफ द नेशन की ख्याति दी गई, एक व्यक्ति उनसे नाखुश था। परिणाम क्या हुआ? खत्म कर दिया। तो प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे, नो दैट यू कैन नेवर प्लीज एवरीवन, यू कैन नेवर प्लीज एवरीवन। और मैनेजमेंट में ये एक स्लोगन कहा जाता है, इफ यू रियली वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल स्टॉप प्लीजिंग एवरीवन। एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू बी अ फेलियर गो स्टार्ट प्लीजिंग एवरीवन। कैनॉट। अब हमने ये लेजी लेथार्जिक एटीट्यूड, विशेष रूप से हम जो कलयुग के निवासी हैं और कलयुग में भारत में, तो हमने मेरे ख्याल से पिछली बार ये लास्ट स्लाइड था हमारा, सिंपली गोइंग टू टेम्पल डजंट मेक यू अ डिवोटी ऑफ कृष्णा एनी मोर देन सिंपली स्टैंडिंग इन अ मेडिकल कॉलेज मेक्स यू अ डॉक्टर। तो कई बार हम बहुत समय से यदि मंदिर जा रहे हैं तो हमें लगता है कि मेरा हक है अब इस मंदिर के ऊपर, भगवान के ऊपर, मंदिर के जितने भक्त हैं, जितनी सामग्री है मंदिर की, उस पे मेरा हक है। और दूसरों को अब ये जान लेना चाहिए कि मैं पिछले 3 साल 5 साल 10 साल से मंदिर जा रहा हूं, तो जान लेना चाहिए कि मैं भगवान का पार्षद बन चुका हूं। और बहुत ही निकट का पार्षद बन चुका हूं। तो कई बार ये हमारा दृष्टिकोण रहता है कि जितना लंबा समय तक हम मंदिर जा रहे हैं हम उतने निकट के पार्षद बन रहे हैं। हम मेरे ख्याल से पिछले बुधवार, उसके पिछले बुधवार महाराज का लेक्चर सुन रहे थे ड्रेसिंग करते समय भगवान का। तो प्रभुपाद को उनके भक्त पूछे कि प्रभुपाद हम आपके इतने निकट नहीं रह पा रहे क्योंकि हम जो आपकी निकट की सेवा है वो नहीं कर पा रहे, तो हमको वो क्लोजनेस नहीं लगता है। तो महाराज ये प्रभुपाद का पास्ट टाइम सुना रहे थे अपने प्रवचन में। तो प्रभुपाद को जब ये प्रश्न पूछा गया, एक भक्त ने पूछा कि आई डोंट फील सो फिजिकली क्लोज टू यू बिकॉज आई एम नॉट रेंडरिंग फिजिकल सर्विस अनटू यू। तो प्रभुपाद ने पॉइंट आउट कर दिखाया, यू सी दिस फ्लाई विच इज हवरिंग अराउंड मी, मक्खी। प्रभुपाद ने मक्खी को दिखाते हुए कहा, ये मक्खी को देख रहे हो कितनी निकट है मेरे, मेरा इस्कॉन का सबसे पहला शिष्य भी इतना निकट नहीं होगा जितनी निकट ये मक्खी है। प्रभुपाद ने कहा, परंतु ये मक्खी कर क्या रही है, मुझे परेशान, केवल परेशान या परेशानी दे रही है ये मक्खी। तो प्रश्न है कि क्या हम निकट आकर मक्खी के समान बन रहे हैं या हम गुरु और गौरांग के मिशन के लिए एक बहुत ही बड़े योगदान बनते हुए एक सूत्रधार बन रहे हैं। तो हमने इसको लिया था। अब इसके पश्चात एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से हम प्रवचन प्रारंभ करेंगे आज का। यहां पर आप देखिए कि जो वैष्णव गुण हैं, वैष्णव गुणों की तुलना एक कोई मिलिट्री का ऑफिसर होता है उसके मेडल्स से की गई है। ये विशेष पिक्चर आपको हम दिखा रहे हैं यूनिफॉर्म्ड पर्सनल का, इसकी वर्दी देखिए कि वर्दी में कितने अलग अलग प्रकार के, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या क्या है। तो मैं आपको समझा दूं कि वो जो उसके आपके लिए कौन सा हो, राइट पॉकेट के ऊपर आप जो कलर्स देख रहे हो अलग अलग, आपको पता है वो सब क्या है? उसने कितने साल सेवा की है वो अलग अलग। जैसे मुझे याद है एयरफोर्स के अंदर केवल एक ग्रीन, छोटा सा ग्रीन कलर का वो रिबन किसी ने लगाया तो वो दर्शाता था कि उसने 9 साल की सेवा की है बस अभी तक। केवल एक छोटा सा, इतना छोटा सा ग्रीन रिबन लगता था। तो ये व्यक्ति के देखिए कितने लगे हुए अलग अलग कलर के। तो उसमें अलग अलग कलर ये दर्शाता है कि उसने कितनी सेवा कहां कहां कौन से हार्ड एरियाज में की है, कौन सी ख्यातियां प्राप्त की हैं आर्मी में रहते हुए। ऊपर के मेडल्स अलग, फिर यहां वहां जितने भी उसके वर्दी में आप देख रहे हो। अब वो कोई सादा कोट नहीं है, ये कोट के ऊपर जो इतना सब कुछ लगा हुआ है वो क्या दिखा रहा है? वो ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति, ये केवल देखने से समझ में आ जाता है कि ये उस सेना में कितना पहुंचा हुआ है, अगर वो शब्द हम इस्तेमाल करें, कितना पहुंचा हुआ या कितना वरिष्ठ है। केवल इतने उसके कोट पे जो अलग अलग प्रकार के मेडल स्टार्स चिन्ह लगे हुए हैं उससे समझ में आता है। तो जब एक जूनियर ऑफिसर इस सीनियर ऑफिसर को सैल्यूट करता है तो प्रश्न है कि किसको सैल्यूट कर रहा है वो। यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि ये मान लो कि आर्मी का चीफ है, चीफ ऑफ द आर्मी, तो एक किस, मतलब एक जूनियर ऑफिसर जब इसको सैल्यूट करता है तो किसको सैल्यूट कर रहा है? हुम दैट जूनियर ऑफिसर इज सैल्यूटिंग? उस व्यक्ति को, क्योंकि अगर ये निकाल दिए जाए, सब कोट वगैरह निकाल दिए जाए, केवल अगर उसका शरीर देखें तो उसके शरीर में और जूनियर ऑफिसर के शरीर में सेम कंपोनेंट्स हैं, है ना? उसका भी हार्ट उसी जगह पे है जहां पे जूनियर ऑफिसर का हार्ट है, उसके भी उतनी 2 किडनियां, इसकी भी 2 किडनियां, इसके भी लिवर है, सब जगह अंदर से बाहर से पूरा जो फिजिकल फॉर्मेशन है सेम है। तो यदि कोई कहे कि भाई फिर ये कोर्ट को सल्यूट कर रहा है, कोर्ट के ऊपर जो इतने सारे मेडल्स और स्टार्स हैं उसको देख के सल्यूट कर रहा है, तो यदि एक पुतले को ये कोर्ट पहना दिया जाए तो क्या वो सल्यूट करेगा? होते ना मैनिक्विन, कपड़ों की दुकान में बाहर पुतले जींस पहन के खड़ा है, टी शर्ट पहन के आदमी खड़ा है, साड़ी पहन के कोई औरत खड़ी, तो वो तो पुतला है केवल। तो पुतले को यदि ये स्टार्स पहना दिए जाए, मेडल्स पहना दिए जाए, तो क्या जूनियर ऑफिसर उसको सैल्यूट करेगा? तो दोनों जरूरी है, वो व्यक्ति भी जरूरी है और उस व्यक्ति ने ये जो हासिल किए हैं मेडल्स वो भी जरूरी है, दोनों होने चाहिए। जैसे कि यदि डिफेंस का ही एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो डिफेंस में आइडेंटिटी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि उस सैनिक के पास उसका आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो उसकी कोई आइडेंटिटी मानी नहीं जाती, चाहे वो कितना भी अपने मुख से कहे कि मैं भर्ती हुआ हूं 10 साल पहले, लेकिन उसने अगर आईडी कार्ड खो दिया सो ही इज एज गुड एज नॉट इन द आर्म्ड फोर्सेज एट ऑल। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा किस्सा हुआ है। हमारी जब ड्यूटी होती थी तो ड्यूटी के समय सीनियर ऑफिसर आकर रात को चेक करते थे कि ये ड्यूटी पे कितना जागरूक है, उसको बोलते थे ड्यूटी ऑफिसर। तो ड्यूटी ऑफिसर आता था और वो कहीं से भी कितने भी समय आ सकता है। तो बड़े बड़े हैंगर जिसके अंदर फाइटर जेट्स वगैरह होते थे वहां पर हमारी ड्यूटी होती थी। तो ये ड्यूटी ऑफिसर आते थे कभी कभी रात के 2 बजे, और वो भी चुपके से चेक करने के लिए कि रात के 2 बजे वो जगा हुआ है कि नहीं। ठंड के मौसम में, दिसंबर के महीने में, नॉर्थ में दिसंबर के महीने में वो जगा हुआ है कि नहीं। तो हमको ये सिखाया गया था कि ड्यूटी ऑफिसर और जो गार्ड, उनको पासवर्ड दिया जाता, उस रात का एक अलग अलग पासवर्ड होते थे, तो पासवर्ड दिया जाता था। तो पासवर्ड कैसे, हरे कृष्णा ऐसे, मतलब ये पासवर्ड तो नहीं होता था, मैं अभी बता रहा हूं। वो केवल वो जो गार्ड है और ड्यूटी ऑफिसर को पता होता था कि क्या पासवर्ड है उस रात का। ये क्यों, क्योंकि अगर कोई यूनिफॉर्म डालकर शत्रु आ जाए, यूनिफॉर्म डाला हुआ दिख रहा है, पूरा यूनिफॉर्म इंडियन एयरफोर्स का यूनिफॉर्म डाला लेकिन शत्रु है वो, तो ये गार्ड पहले पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड बताओ, ये बोलेगा हरे। तो अगर उसने पासवर्ड गलत बोला तो ये उसको गोली मार सकता है। और केवल उतना ही नहीं, पासवर्ड भी उसने बोल दिया, उसके बाद गार्ड के पास ये अधिकार दिया जाता है कि वो उस ड्यूटी ऑफिसर का आई कार्ड चेक करना कि तू आई कार्ड लेकर आया है कि नहीं। तो एक हमारे ट्रेनिंग में एक व्यक्ति, उसको घर जाना था, उसकी मां बीमार थी। तो अक्सर ट्रेनिंग में फॉल्स टेलीग्राम्स मंगाते थे ट्रेनीज घर जाने के लिए, क्योंकि परेशान हो जाते ट्रेनिंग, इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में वो लोग बेचारे, वो घर की याद आती थी, होम सिकनेस ये सब कुछ होता था, तो घर जाना मिलता नहीं था, कंपल्सरी आपको उधर ही रहना है। तो उसको घर जाना था और उसकी माँ बीमार थी, टेलीग्राम आ रहा था मदर सीरियस बहुत कॉमन टेलीग्राम आया करता था डिफेंस में, मदर इज सीरियस। तो इतना कॉमन वो टेलीग्राम आता था कि वो ऑफिसर्स विश्वास करना अब छोड़ दिए कि ये सही में इसकी मदर सीरियस है कि नहीं, उनका विश्वास उड़ गया था उस टेलीग्राम से। तो ये हमारे बैच का था, तो इसकी मदर सही में सीरियस थी और इसको छुट्टी नहीं दी गई। तो एक के बाद दो, मदर एक्सट्रीमली सीरियस, मदर क्रिटिकल कंडीशन, ऐसे 3 टेलीग्राम आए, उसको छुट्टी नहीं दी। और जो ड्यूटी ऑफिसर था उनका, जो हमारा जो कमांडिंग ऑफिसर था, उसने छुट्टी नहीं दी, उसको लगा कि ये सब फेक टेलीग्राम्स मंगाते हैं लोग घर जाने के लिए, नहीं दी उसको छुट्टी। फिर फाइनली टेलीग्राम आया, मदर पास्ड अवे। तभी उसको लगा कि ये झूठ शायद नहीं हो सकता, तो फिर इसने फोन करके पता लगाया, तो फिर सही में उनकी मदर गुजर गई थी। तो ये जो ट्रेनी, इसको इतना क्रोध अब इस ड्यूटी ऑफिसर या कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर। तो घर गया, फिर घर जाने के बाद फाइनली उसको छुट्टी मिली। घर जाने के बाद वापस जब वो आया, ड्यूटी ज्वाइन की उसने, ट्रेनिंग ज्वाइन की, तो फिर जब नेक्स्ट उसकी ड्यूटी थी, उसने ड्यूटी लगवाई जब वो कमांडिंग ऑफिसर रात के ड्यूटी ऑफिसर बना हुआ था। अच्छा लग रही स्टोरी? तो रात के कुछ 2-2.5 बजे अब ये अकेला और वो ड्यूटी ऑफ कमांडिंग ऑफिसर एज अ ड्यूटी ऑफिसर चेक करने आया, तो इसने लोडेड गन इसके पास थी, तो इसने बंदूक सामने उसके करते हुए कहा आई कार्ड नीचे रखो, और ये इसका अधिकार था कि उसको आई कार्ड चेक करना है, चेक करने के लिए। तो उसने जो उसका प्रोसीजर था वो ड्यूटी का प्रोसीजर, उसने आई कार्ड नीचे रखा, फिर इसने बंदूक दिखाते बोला कि 10 कदम पीछे। उसने आई कार्ड लिया और उसको पता नहीं कुछ बचपन से एक उसको आदत थी, वो कागज खा लेता था। ये व्यक्ति जो हमारा बैचमेट था इसको आदत थी, ये कागज खा सकता था, तो उसने वो पूरा प्लास्टिक को फाड़ दिया और अंदर का जो कागज का आई कार्ड था उसको खा लिया इसने। और जितने उसके राइफल के मैगजीन में गोली थी उसके छीने में उतार दी, मार डाला उसको। ये सच्ची घटना हुई, उसको मार डाला। अब फिर इंक्वायरी हुई तो इसने कह दिया कि भाई रात के 2 बजे अंधेरा था, ये व्यक्ति आया, इसके पास आई कार्ड नहीं था। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल गार्ड अगर वो आई कार्ड नहीं रखा है तो उसको राइट्स था मारने का, मुझे क्या पता कौन था ये। तो सब जानते थे कि इसने जानबूझ के मारा है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, और इसके पास एक वैलिड रीजन था, और वो आई कार्ड तो उसने खा लिया था अंदर। तो मैं बता रहा हूं कि पॉइंट अभी इस पे आते हैं वापस कि एक व्यक्ति जो इसमें है, सेना में है, आर्मी में है या नेवी में है, एयरफोर्स में है, तो उसको जो ख्याति प्राप्त होती है, उसके जो मेडल्स हैं, वो उसके आभूषण हैं। इसके आभूषण क्या है इस व्यक्ति के यहां पर? ये सारे जो मेडल्स हैं ये उसके आभूषण हैं। उसी प्रकार से एक वैष्णव के आभूषण क्या है? शास्त्रों में एक सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत का एग्जैक्ट श्लोक है जिसके अंदर बताया गया है कि एक साधु, एक वैष्णव के आभूषण क्या होने चाहिए। तितिक्षव कारुणिक सुरदम सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषणम। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक की जो अंतिम लाइन है, अंतिम शब्द इस श्लोक का है भूषणम, जैसे कि आभूषणम बोलते हैं। तो एक भक्त, एक साधु का आभूषण क्या होना चाहिए, क्या क्या आभूषणों से सुसज्जित वो साधक होना चाहिए, इस श्लोक में बताया गया। तितिक्षव, उसके अंदर तितिक्षा, तितिक्षा का अर्थ है सहनशीलता, सहनशीलता उसके अंदर होनी चाहिए। कारुणिक, करुणा उसके अंदर होनी चाहिए। सुरदम, केवल करुणा नहीं बल्कि सर्वदेही नाम, सब देहधारियों के लिए उसके अंदर उस प्रकार की फ्रेंडली करुणा होनी चाहिए, उनके मित्र वो बनना चाहिए। शांत, पीसफुल, अजात शत्रुव शांत, अजात शत्रुव का अर्थ है उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, हर समय शांत। और ऐसे साधु के लक्षण, मेरे ख्याल से इसका जो ट्रांसलेशन है वर्ड टू वर्ड, उसमें साधव में ट्रांसलेटेड अपने भागवत में इस प्रकार से किया गया, वन हु फॉलोज द स्क्रिप्चर्स, वो है साधव। और ये है आभूषण। तो केवल वस्त्र धारण करने से कोई साधु नहीं बनता, जैसे कि केवल कोट पहनने से ये कोई कमांडिंग ऑफिसर नहीं बनेगा, इसके ऊपर जो आभूषण लगे हैं वो दिखाएंगे, वो चिन्ह दिखाएंगे कि हां ये व्यक्ति इतना सीनियर ऑफिसर है, तो यदि कोई अपने आप को बहुत वरिष्ठ भक्त बनना बनाना चाहता है साधना भक्ति में, तो कौन से आभूषण उसको पहनने हैं? चांदी, हीरा, सोना, ये सब नहीं। कौन से आभूषण? तितिक्षव कारुणिक सुरदम सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषणम। ये सारे उसके अंदर क्वालिटीज होने चाहिए। और ये हम क्यों इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि ये सारे जो गुण हैं ये क्या दर्शा रहे हैं? ये सारे गुण यही दर्शा रहे हैं कि उसके जीवन में उसने परिवर्तन लाया। पहले जो दूषण थे, अब दूषण के बदले भूषण या आभूषण उस पर सुसज्जित हैं। ये है परिवर्तन। तो ये कुछ दो श्लोक हम लेंगे, ये नीति शास्त्र से है। तो क्योंकि हम लक्षणों की बात कर रहे हैं, आभूषणों की बात कर रहे हैं, मेडल्स की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो ये दो श्लोक हैं जिसमें बताया गया है कि जब कोई स्वर्ग से वापस लौटता है यहां पृथ्वी में, ऊपर से स्वर्ग से स्वर्ग से भी नीचे लौटते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर से यहां आना पड़ता है। और दूसरा इसके बाद हम श्लोक लेंगे जो नर्क रिटर्न है, नीचे से ऊपर आया है। तो जैसे होते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से आया है, 10 साल अमेरिका में रहा, इंडियन भारतीय अमेरिका में रह के आया है, तो कुछ उसके लक्षण से समझ में आएगा कि हाँ अमेरिका में रह के आया है, है ना। क्या क्या लक्षण देखोगे आप उनके अंदर? अमेरिकन रिटर्न कैसे लगेगा, कैसे समझ में आएगा? हाँ, बात करने की जो शैली है वो बदल जाएगी। और फिर भारत में आने के बाद भारत के सब चीजों को देख के, डर्टी है, फिल्दी है, वो टू नाइस, टू स्वेटी है, वो ऐसे तो ये सब जो अलग अलग उसके चोचले होंगे, चोचले बोलते हैं ना जो वहां से चोचले सीख के आए हैं फिर यहां पे, तो होता है कोई कहां से रिटर्न है तो समझ में आ जाते कि हाँ वहां। जैसे कई बार भक्त भी टेंपल रिटर्न घर पे जाते हैं तो घर वालों को समझ में आता है टेंपल रिटर्न है, ये कांदा लहसुन, ये टीवी बंद करो, हरे कृष्णा बोलने का, हेलो नहीं बोलने का, तो समझ में आया इस्कॉन रिटर्न है। तो ये एक श्लोक है संस्कृत का जिसके अंदर समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति स्वर्ग रिटर्न्ड है यदि ये लक्षण इसके अंदर दिख रहे हैं। स्वर्गच्छता नाम यह भूमि लोके चत्वारि चिन्हानि बसंति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी सुरार्चनम ब्राह्मणम तर्पणम च, कि ये चार चिन्ह, चत्वारि चिन्हानि, चार चिन्ह उसके अंदर दिख रहे हैं तो स्वर्ग रिटर्न समझ लेना चाहिए। स्वर्गच्छता नाम यह भूमि, इस भूमि पर स्वर्ग से जो आया है उसके चार चिन्ह कौन से हैं? दान प्रसंग, बहुत दानवीर यदि कोई है, स्वाभाविक रूप से चैरिटेबल, बहुत दानवीर है, तो समझ लेना चाहिए कि यह एक लक्षण है स्वर्ग रिटर्न व्यक्ति का जो स्वर्गवास कर कर आया है। अगर हम वो वर्ड यूज करें कि स्वर्गवास कर कर जो आया है उसका पहला लक्षण है दान प्रसंगो, दानवीर, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से दान करने की प्रवृत्ति होगी। मधुरा च वाणी, उसकी जो वाणी है बहुत मधुर वाणी बोलने वाला व्यक्ति, तो समझ लेना चाहिए कि वहां से सीख क्या आया। मधुर वाणी, स्वर्ग में सब बहुत मधुर वाणी बोलते हैं। सुरार्चनम, सुर अर्थात देवताओं को स्वाभाविक रूप से उनका आदर सत्कार जो करता है, समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग रिटर्न है। ब्राह्मण तर्पणम च, जो ब्राह्मण को तर्पण देता है और सारे विधि विधान का पालन करता है, रीति रिवाज का पालन करता है, जो एकदम आदर्श जीवन जीता है, तो ये चार लक्षण हैं किसके, जो व्यक्ति स्वर्ग रिटर्न है। अब आप तैयार हैं? नर्क रिटर्न व्यक्ति कौन है, तो उसके भी चार चिन्ह या चार लक्षण बताए गए। नरकस्य चिन्हम नरकागतस्य, यहां पर बताया है कि वो नर्क से आया है और इन चिन्हों के वजह से वापस नर्क जाएगा। तो सबसे पहला चिन्ह लक्षण नर्क रिटर्न कौन है, विरोधिता बंधु, जो हर समय विरोध करता रहे, अपोज, हर समय विरोध करता रहे, उसके सामने कोई भी प्रस्ताव कुछ रखे विरोध करेगा, नहीं गलत है, उसको अभी ये भी बोलो कि भाई तू अच्छा है, नहीं 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 अच्छा अच्छा मैं अच्छा, पहले विरोध करेगा, स्वाभाविक रूप से पहले विरोध करेगा, वो विरोधित हर समय, और विशेष रूप से जो उसके सगे संबंधी होंगे उनके साथ सबसे ज्यादा विरोध करेगा वो, विरोधिता बंधु। जलेशु नित्यम सरोगता, सरोगता का अर्थ है हर समय रोगग्रस्त, हर समय कभी पेट में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी किडनी में दर्द, कभी हृदय में, ये वो, हर समय सरोगता, हर समय रोग से भरा हुआ, समझ लेना चाहिए कि वो भी एक लक्षण है, व्यक्ति वहां से लेकर आया है सब कुछ। सरोगता यह अतीव दोषा, अतीव दोषा का अर्थ है जो हर समय दोष दृष्टि रखे, दोष देखता रहे हर समय कि हाँ, अगर उसे कोई बहुत अच्छी वस्तु भी कोई यहां पर प्रस्तुत कर दे, जैसे कि भगवान के सुंदर अर्च विग्रह को भी यदि वो देख रहा है, तो सुंदर अर्च विग्रह को देखते हुए भी वो बोलेगा काला पत्थर है, ब्लैक वन, दोष देखेगा कुछ उसके अंदर। तो किस प्रकार का ये लक्षण बताया गया है, ये अतीव दोषा, बहुत अतीव प्रकार का, अति प्रकार की दोष दृष्टि जिसके अंदर है, नित्यम परायण, उसके लिए परायण रहता है वो, मतलब शरणागत है इन सब लक्षणों के प्रति, वो परायण है, जैसे हम बोलते हैं ना नारायण परायण, वैसे ये व्यक्ति इन सब का परायण। और अंतिम लक्षण बताया गया कटुकाच वाणी, कर्कश वाणी बोलने वाला हर समय, जिसके जिह्वा पर हर समय कांटे, ऐसे लगता है कि जिह्वा के ऊपर कांटे उग रहे हैं, टेस्ट बर्ड्स नहीं है, कांटे हैं, कांटे बर्ड्स हैं वो, हर समय कर्कश वाणी बोलने वाला। अब देखिए, मुझे याद है कुछ साल पहले यहां नासिक में मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई, एक व्यक्ति जिनको मैं बहुत समय से जानता भी हूं, तो किसी कार्यक्रम के लिए हम लोग एक साथ मिले। अब ये व्यक्ति बाहरी दृष्टिकोण से एकदम सत्वगुणी जीवन इनका, वरण भात खाने वाले सत्वगुणी बोल सकते हैं हम। तो जब हम मिले तो मैंने कहा कि आप नासिक आए, बहुत वातावरण यहां पर आपने शुद्ध किया आकर, तो मैं ऐसे गुणगान कर रहा था उनका, सब भक्तों के सामने उन्होंने कहा मुझे कि जो मेरी प्रशंसा करते हैं वो मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। तो अब जब ये सुना मैंने कि जो मेरी प्रशंसा करते हैं वो मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं, तो मैंने कहा फिर प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए मैं आपका मित्र बन सकूं। तो कई बार हम देखते हैं, जय श्री राधा मदन गोपाल जी की, तो कई बार हम देखते हैं कि कोई चाहे किसी ब्राह्मण परिवार में भी क्यों ना पैदा हुआ हो, कलयुग में तो खैर जन्मना जाए तो शूद्र, सब शूद्र ही हैं। कोई अगर कह रहा है कि भाई मैं इस कुल में पैदा हूं, मैं ऐसे ब्राह्मण कुल में पैदा हूं, और ब्राह्मणों में भी वो सबसे ऊंचे दर्जे वाला ब्राह्मण बना हूं, मैं उसमें पैदा हुआ हूं, खाली मैं खिचड़ी वरण भात खाता हूं कुछ नहीं। तो हो सकता है कि खाली खिचड़ी वरण भात खाता हो लेकिन जिह्वा से कांदी भजी निकल रही बाहर। रोज खा रहा है केवल वरण भात बिना कांदा लहसुन के, लेकिन मुंह से मिर्ची पकौड़ा निकल रहा है बाहर, कटुका चवाणी। तो समझ लेना चाहिए कि हो सकता है कि किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हो लेकिन रिटर्न कहां से है। तो ये अलग अलग चिन्ह बताए गए हैं कि लक्षणों से समझ में आता है। इसलिए वैष्णव की वैष्णवता, एक है वैष्णव एक है वैष्णवता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके ऊपर बहुत प्रवचन किए कि वैष्णव की वैष्णवता होनी चाहिए तब वो वैष्णव है। केवल लंबा चौड़ा तिलक लगा लेना, मोटी मोटी कंठी पहन लेना और एकदम बड़ा बड़ा बीड बैग और चमकदार धोती कुर्ता पहन लेना, नहीं, वो वैष्णवता नहीं है। वैष्णवता अर्थात जो हमने आभूषणों की चर्चा की, वो सारे आभूषण। तो फिर से हम कौन से पॉइंट पर जा रहे हैं कि उसने बाहरी परिवर्तन नहीं, आंतरिक परिवर्तन जिसने लाया है वो वास्तविक परिवर्तन है। इसलिए भगवद गीता का ही उदाहरण लें कि अर्जुन को भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, कि क्लैब्यम का अर्थ है कि तू नपुंसक की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है अर्जुन। क्या कहा अर्जुन को? नपुंसक, क्लैब्यम, इंपोर्टेंट। प्रभुपाद ट्रांसलेट कैसे करते हैं? इंपोर्टेंट, दीज आर वर्ड्स ऑफ एन इंपोर्टेंट। तो अर्जुन को भगवान ने उस प्रकार से एक बहुत विशेष कारण के लिए कहा, क्योंकि वही अर्जुन एक साल अज्ञातवास में वो नपुंसक की भूमिका निभाए, बृहन्नला, और बृहन्नला के रूप में अर्जुन अकेले पूरी कुरु सेना को परास्त किए थे महाराज विराट के नगर में। तो उस समय बाहरी रूप से अर्जुन एक नपुंसक थे, परंतु आंतरिक रूप से वो ओरिजिनल अर्जुन थे। और यहां भगवान बोल रहे हैं कि तू बाहरी रूप से तो अर्जुन दिख रहा है, अंदर से तो बृहन्नला बना है। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। तो इसलिए वैष्णवता वो आंतरिक, हमारे अंदर से वो गुण बाहर प्रदर्शित होने चाहिए। तो चेंज, इसको हमने एक एक्रोनिम बनाया है कि अब एक एक इसके कौन से गुण हमारे अंदर आने चाहिए कि जो हमारे अंदर परिवर्तन लाए, ब्रिंग अबाउट दैट चेंज। तो यदि हम इस स्पेलिंग को लें तो एक एक अल्फाबेट को हम लेंगे, सी स्टैंड्स फॉर करेज, एच स्टैंड्स फॉर हार्डवर्क, ए स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन, एन फॉर नेगेशन, जी फॉर गेज, ई फॉर बीइंग इफेक्टिव। तो हमारे जीवन में यदि परिवर्तन लाना है, अब ये जो एक्रोनिम बना हुआ है, ये एक्रोनिम काफी इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया, प्रभुपाद के कॉन्वर्सेशंस, प्रभुपाद के लेक्चर्स और भागवत के कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर, कि जहां जहां परिवर्तन दिखा तो उन्होंने कौन से गुणों को दर्शाया। तो हम एक एक उदाहरण भी लेंगे, ये पूरे एक्रोनिम का एक एक उदाहरण हम लेंगे कि किसने करेज दिखाया परिवर्तन लाने के लिए, किसने हार्डवर्क दिखाया, किसने एब्जॉर्प्शन, नेगेशन, ये सब कुछ कैसे दिखाया उन्होंने। अब जब तक हमारे अंदर इनमें से गुण नहीं आएंगे या ये गुण हम अर्जित नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर परिवर्तन असंभव है। जैसे कि हमने कहा कि खाली बाहरी रूप से अपने आप को परिवर्तित कर लेना, वो तो कोई भी कर सकता है, वो तो एक नौटंकी भी कर सकता है, परंतु आंतरिक रूप से हमारे अंदर ये सारे जो गुण हैं वो आंतरिक रूप से हमारे अंदर प्रस्तुत होने चाहिए। तो हम एक एक उदाहरण अब लेंगे। सबसे पहले करेज। करेज का अर्थ है कि परिवर्तन लाने की हिम्मत रखना। देखिए, परिवर्तन लाने की हिम्मत रखना यह सबसे पहला लक्षण है हमारे अंदर परिवर्तन का, क्योंकि इस भौतिक संसार में परिवर्तन की चर्चा लोग बहुत करते हैं। परिवर्तन लाना चाहिए, भारत में परिवर्तन लाना चाहिए, बहुत हो गया, अभी सरकार परिवर्तित होनी चाहिए। तो परिवर्तन की चर्चाएं तो बहुत चल रही हैं, लेकिन आगे होकर स्वयं अपने आप के अंदर परिवर्तन कितना लाए हैं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह बना रहता है हर समय, बड़ा प्रश्न चिन्ह। माता पिता बच्चों को बोले चेंज, परिवर्तन लाओ, परिवर्तन लाओ, वैसे मत रहो पहले की तरह, चेंज योर सेल्फ। बच्चे पूछते हैं, आप, तुम मेरे को प्रश्न पूछता है, मुझसे पैदा हुआ, मुझे पूछता है। तो परिवर्तन लाने के लिए हिम्मत रखना। जैसे मेरे मित्र ने ये बाहरी परिवर्तन को देख के ही उसको इतना आश्चर्य हुआ, वो मेरे को पूछता, तू बाहर जाने को तेरे को डर नहीं लगता ऐसे, सर मुंडवाया हुआ, पीछे चोटी है, ये सब कैसे, हिम्मत कैसे तेरे से बाहर जाने की हिम्मत कैसे होती। तो इसमें उदाहरण, ये सब उदाहरण हम पहले से जाने हुए उदाहरण है, लेकिन अभी इसके संदर्भ में हम ये उदाहरण समझेंगे। तो मृगारी के जीवन में परिवर्तन नारद मुनि ने जो लाया, या मृगारी जो परिवर्तन नारद मुनि की सहायता से उन्होंने अपने जीवन में लाए, तो नारद मुनि ने सबसे पहले मृगारी ये शिकारी, ऐसा शिकारी जो जानते नहीं होंगे इनके विषय में, बताते हैं कि मृगारी वो प्राणियों को अधमरा कर छोड़ देता था, पूरा नहीं मारता था, उसमें आनंद लेता था, वो तड़पते रहते थे, तड़पते तड़पते मरते थे, मृगारी को उसमें आनंद आता था। देखो क्या कॉन्शियसनेस था, क्या लेवल का था वो। एक तो मांसभक्षी शिकारी, ऐसे कुकर्म में जाहिल गंवार उस प्रकार का ये व्यक्ति, और उसको आनंद उसमें आता था, तड़पते हुए प्राणियों को देखने में उसको आनंद आता था, पर दुख सुखी उस प्रकार का व्यक्ति मृगारी। और अपनी जीविका उस पर चलाता था वो। तो नारद मुनि ने जब उसको प्रचार किया और प्रचार करने के बाद नारद मुनि मृगारी से कहते हैं, जब मृगारी को लगा कि उसको जब ये एहसास हुआ कि बहुत कुछ गलत वो कर रहा है, तो मृगारी उस स्थिति तक पहुंच चुका था कि हां अब मैं नारद मुनि जो मेरे अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं मैं स्वीकृति देता हूं उस परिवर्तन की, विलिंगनेस। तो नारद मुनि ने सबसे पहले मृगारी को कहा, तुम्हारा वो धनुष तोड़ दो, जिससे तुम शिकार करते हो उसे तोड़ो। कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया पहले नारद मुनि ने नहीं दी, नारद मुनि ने कोई मंत्र नहीं दिया, या पहले ये नहीं दिखाया कि भाई मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे भरण पोषण के लिए बंगला बना दिया हूं, ऑलरेडी फंड रेजिंग हो गया है, तुम्हारा बंगला बन गया है, नौकरी भी तुम्हारी लग गई है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, पहले तोड़ो इसको। मतलब नारद मुनि, अगर आज की भाषा में उसको हम अनुवादित करें तो नारद मुनि ने मृगारी को कहा, क्विट द जॉब, पहले नौकरी छोड़, नौकरी छोड़। फिर जैसे कई बार हम लोग भी ब्रह्मचारी इस्कॉन में ज्वाइन हुए, सब देखभाल कर गया, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सब 3 बार प्रसाद मिल रहा है, हाँ चलो अभी रिजाइन कर सकते हैं। यहां पर नारद मुनि ने कोई आश्रम नहीं खोल रखा था, कोई बड़ी इंटरनेशनल सोसाइटी नहीं खोल रखी थी, नारद मुनि तो भ्रमण करने वाले, ऐसे कितनों को नारद मुनि जाके ब्रह्मचारी बना के छोड़ दिए, चले गए वहां से, कोई उनको उनके लिए कोई 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 मंदिर नहीं नारद मुनि ने खोल के रखा कि हाँ यहां पर तुम ज्वाइन करो, यहां पर बाकायदा सब कुछ है, तुम्हारे मेडिकल, तुम्हारे लॉजिंग के लिए, बोर्डिंग के लिए, मेसिंग के लिए, सब कुछ है यहां पर अवेलेबल। नहीं, मुर्गारी को पहले कहा नौकरी छोड़ो, मतलब उसकी नौकरी क्या थी, धनुष बाण, छोड़ो उसको, तोड़ो उसको, छोड़ो मतलब तोड़ो उसको। तो वो मृगरारी करना, मृगरारी को वो करना, उसके लिए हिम्मत। तो मृगरारी से हम परिवर्तन का कौन सा गुण सीखते हैं, करेज। इफ वी वॉन्ट टू चेंज, द फर्स्ट क्वालिटी वी लर्न फ्रॉम मृगरारी इज करेज टू चेंज। क्या हिम्मत है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, क्या हमारे अंदर हिम्मत है? सब कुछ जो उनको प्रसन्नता दे वो छोड़ना और वो अपनाना, उसकी हमने पहले भी चर्चा की, टू एक्सेप्ट एंड टू रिजेक्ट बोथ, उस दोनों के अंदर हिम्मत चाहिए। हार्डवर्क में ध्रुव महाराज, अब हाँ हम ध्रुव महाराज के विषय में ये सुनते हैं कि 6 महीने में वो भगवान को अवतरित करा लिए, 6 महीने में, लेकिन वो जो 6 महीना उन्होंने इतनी कठोर तपस्या जो की, हार्डवर्क, हम लोग जनरली ध्रुव के प्रसंग में क्या और कितना पढ़ते हैं, हाँ ध्रुव महाराज को उनके सौतेली माँ ने अपमान किया और ध्रुव महाराज जंगल में गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय उन्होंने जप किया, 6 महीने में भगवान है। वो 6 महीने में क्या किया उन्होंने, उसका भी विवरण दिया गया है कि पहले 3 महीने, पहले 1 महीने वो हर 3 दिन बाद कुछ जो भी वहां पर गिरते, फल गिरे हुए या पत्ते गिरे हुए, पहले 1 महीना हर 3 दिन बाद वो खाते उसको बस, और वृक्षासन में खड़े, वृक्षासन में खड़े वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते। फिर दूसरे महीने हर 6 दिन बाद वो केवल जल ग्रहण करते, वो खाना पीना भी छोड़ दिया, अब लिक्विड डाइट के ऊपर। फिर उसके अगले महीने हर 9 दिन बाद वो केवल सांस लेते। सोचो 9 दिन बाद वो एक सांस लेते और फिर अंतिम चरण में उनकी तपस्या में उन्होंने अंतिम महीनों में सांस लेना भी बंद कर दिया। तब जाकर पूरा जो यूनिवर्सल वेंटिलेशन है वो इफेक्ट हो गया, वो चोकअप हो गया। तो ध्रुव महाराज कितने 5 साल के, ये भी ध्यान में रखना है। ध्रुव महाराज केवल 5 साल के, अकेले वहां पर नारद मुनि, यहां पर भी नारद मुनि, नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को बता दिया कि भाई 6 महीना ऐसे ऐसे मधुवन में जाके ऐसी तपस्या करो। उसके बाद नारद मुनि चले गए। अब अकेले वन में अकेले ध्रुव महाराज, और ऐसा नहीं कि उनकी माता सुनीति जिन्होंने उनको पथ प्रदर्शक गुरु जो बनी, माता सुनीति चिंता करते हुए बीच में 1-2 महीने बाद आ गई ढूंढते हुए कि अरे मेरा बेटा कहां है, 5 साल का क्या कर रहा है। नहीं, तो जो हार्डवर्क ध्रुव महाराज ने वो 6 महीनों में डाला, जो पूरा उसको कॉम्पैक्ट बनाया उन्होंने कि भगवान को 6 महीने में उन्होंने बुलवा लिया। तो ध्रुव महाराज से क्या सीखते हैं कि उन्होंने हार्ड वर्क से परिवर्तन, हालांकि बाकी सारे क्वालिटीज हैं जो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन जो प्रोमिनेंटली इनके अंदर जो हम सीख सकते हैं वो प्रोमिनेंट क्वालिटीज हम सीख रहे हैं। एब्जॉर्प्शन हम हरिदास ठाकुर से सीख सकते हैं कि साक्षात माया देवी को भेजा गया। साक्षात माया देवी, हरिदास ठाकुर जब जप कर रहे तो माया देवी वहां पर प्रकट हुई, और हरिदास ठाकुर ने माया देवी, देखो हरिदास ठाकुर तो परिवर्तन के ऐसे उदाहरण हैं कि माया देवी को परिवर्तित कर दिया। 3 दिन लगातार माया देवी आकर हरिदास ठाकुर की परीक्षा ले रही थी, और 3 दिन के पश्चात हरिदास ठाकुर के एब्जॉर्प्शन को देखकर माया देवी के अंदर परिवर्तन आया। एब्जॉर्प्शन का अर्थ है, एब्जॉर्प्शन मींस वन हु कैन नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड, दैट मींस इज एब्जॉर्ब्ड। सो हरिदास ठाकुर, 2 एग्जाम्पल्स है हरिदास ठाकुर के। एक तो जब वो गुफा में रहते थे वो एक उदाहरण है, वहां पर भी एक ऐसी स्थिति में रहते थे कि कोई साधारण व्यक्ति तुरंत ही वो विक्षेपित हो जाए, डिस्ट्रैक्टेड हो जाए। अब देखिए हम लोग जब जप करने बैठते हैं तो कितने डिस्ट्रैक्शंस चलते रहते हैं। सुबह सुबह हम लोग जप करने बैठे हैं, सबसे पहले तो घड़ी को देखते रहते हैं, नहीं धीरे चल रही है, कभी घड़ी को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सुबह सुबह 5:45 बजे हम जब शुरू करते हैं, फिर अब है क्या कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिवोटीज एंट्री करते हैं, तो कई बार हमारा मनोरंजन बना रहता है कि अलग अलग टाइम पर अच्छा अभी ये आया। हाँ, तो मन जो है, मन का मनोरंजन क्या होता रहता है, क्योंकि ज्यादा कुछ एक्टिविटी तो हो नहीं रही, अभी बैठा है, अभी 7:30 तक 7:45 तक बैठा रहेगा ऐसे ही, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी तो होने नहीं वाली है। हाँ, कई बार तो वो माला भी अंदर घूम रही कि नहीं समझ में नहीं आता है, हमको लगता है हम इतने एब्जॉर्ब्ड हैं। तो मन जो है मनोरंजन लेता है, हाँ अभी ये आया, अच्छा ये 6 बजे आया, अच्छा ना के आया कि नहीं, तिलक तो लग रहा है। एक सन्यासी बता रहे थे कि वो जब अमेरिका में ब्रह्मचारी थे तो वो कहते थे कि तिलक को देखकर हम टाइमिंग बता देते थे एक होता था मंगलारती तिलक, एक होता था दर्शनार्थी तिलक। तो बोलते कैसे समझ में आता था कि एकदम अभी दर्शनार्थी, अगर 7:15 की दर्शनार्थी, तो दर्शनार्थी में बहुत लोग दिख जाते थे अचानक भक्त, तो तिलक से समझ में आ जाता था कि ये दर्शनार्थी के लिए आया है, एकदम फ्रेश तिलक है। और दर्शनार्थी तक तिलक थोड़ा फीका पड़ जाता है, तो समझ में आना चाहिए इसका फीका तिलक हो गया मतलब ये मंगल आरती में आया था। तो सन्यासी बता रहे थे, सो देर वॉज मंगल आरती तिलक, देर वॉज दर्शनार्थी तिलक, उसके आगे नहीं बताया उन्होंने, आगे भी हो सकता है 10 o'clock अपना जो मंगल क्या बोलते हैं इसको, मंगल भोग आरती, उसका तिलक अलग, राजभोग आरती का तिलक, शयन आरती। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है हमारे जप के समय, वो अनगिनत तरीके से हमारे मन डिस्ट्रैक्टेड रहता है। तो हरिदास ठाकुर वो जो परिवर्तन हमें कैसे सिखाते हैं, एब्जॉर्प्शन के द्वारा, कि साक्षात माया देवी आ गई, बट ही वॉज एब्जॉर्ब्ड एंड ही चेंज्ड माया देवी हरसेल्फ। नेगेशन में उदाहरण अजामिल का हम लेंगे, जब अजामिल यमदूत से बचाए गए, विष्णु दूतों ने बचाया अजामिल को यमदूतों से, उसके पश्चात जो 12 साल अजामिल हरिद्वार में जाकर उन्होंने अपने आप को ऐसी स्थिति में रखा, राधा गोविंद महाराज का एक प्रवचन मैं बहुत साल पहले सुना, तो उन्होंने बताया कि अजामिल वो 12 साल हरिद्वार में अपने आप को, अजामिल ने टोटली आइसोलेट किया, क्योंकि यमदूत के साक्षात दर्शन हुए हैं अजामिल को, और बाल बाल बचा है वो अभी नरक जाने से, तो इसलिए उसके अंदर वो जो डर था, क्या डर था कि नहीं थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो राधा गोविंद महाराज बता रहे थे वो हर समय कोठरी में बंद रहकर अपना साधना करता था, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगा, कुछ दृश्य बिल्कुल नहीं देखना है, पहले जो गलती हुई थी। तो उसने कॉन्शियसली अपने आप को निगेट किया, नेगेशन परिवर्तन लाने के लिए। तो जो अजामिल का जो दूसरा 12 साल है, सेकेंड हाफ बोल सकते हैं, थर्ड हाफ बोल सकते हैं, पहला हाफ था जो एज अ शुद्ध ब्राह्मण, फिर बाद में वैश्या के साथ, उसके पश्चात थर्ड पार्ट जो उसका था, उससे नेगेशन ये सीखते हैं। गेज का अर्थ है मूल्यांकन करना कि हमारा परिवर्तन कितना हो रहा है, इसका मूल्यांकन करते रहना, यह भी बहुत आवश्यक है परिवर्तन की विधि के समय। और इसमें उदाहरण समझ में आता है श्रीमद् भागवत से जड़ भरत का, क्योंकि वो पहले भरत महाराज जो कि पूरे भारतवर्ष का राज्य छोड़कर वो वैराग्य को अपनाए, परंतु फिर हिरण के प्रति उनकी जो कृपा भावना हुई और वो फिर हिरण बने, तो हिरण बनने के पश्चात फिर वो जड़ भरत बने। और जड़ भरत श्लोक है श्रीमद् भागवत में जहां जड़ भरत वो एनालाइज कर रहे हैं कि उन्होंने कौन सी गलती की जिसके वजह से वो हिरण बने, और हिरण में उन्होंने, हिरण की योनि में उन्होंने कितना श्रवण किया, केवल वो यही करते थे, उनको पूरी स्मृति थी कि उन्होंने क्या गलती की, इसलिए हिरण की योनि में भी वो जाकर भागवत श्रवण किया करते थे। और इसलिए जड़ भरत उन्होंने कहा कि अभी ये लास्ट, बस इसके बाद रिस्क नहीं लेना है मुझे अभी। तो जड़ भरत उन्होंने मूल्यांकन करते गए कि कहां कहां से क्या क्या गलतियां उन्होंने की, उसको चेंज करते हुए और ऐसा एक जीवन व्यतीत किया उन्होंने। यदि आप 5वें स्कंद में पढ़ोगे तो जड़ भरत उनकी जो जीवन शैली बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल जड़ भरत के विषय में बताया गया कि वो समाज में जो एक साधारणतः कोई व्यक्ति रहता है उसके ठीक विपरीत वो उन्होंने अपनी जीवन शैली बना ली थी। जैसे शौच के लिए वो हाथ धोकर फिर जाते थे शौच करने के लिए और जानबूझ के जड़ बने रहते, इसलिए उनका नाम जड़ भरत, जड़ बने रहते थे। यहां तक कि उनके परिवार के सदस्यों ने देखा कि ये किसी काम का नहीं है, ये एकदम जड़ है, तो इसको वो खेतों में वो पुतला खड़ा कर देते ना, स्केयर करो जिसको बोलते, वैसे इनको खड़ा कर देते थे कि कम से कम तो खड़ा रहे, इतना भारी भरकम तो खड़ा रहे, केवल ये कौवे चिड़िया वगैरह ये तो हमारे खेत को नहीं खाएंगे, वैसे खड़े रहते थे। और खड़े खड़े लेकिन अपना जीवन इस प्रकार से जीते हुए वो मूल्यांकन करते रहते थे कि ये मेरा आखिरी जीवन है। इसलिए जब उन्होंने अपना मुख खोला पहली दफा, वो महाराज रहुगुण पहचान गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और वो शिक्षाएं अगर भागवत में हम पढ़ें, जड़ भरत ने जो महाराज रहुगुण को शिक्षाएं दी कि महाराज रहुगुण इनके पैरों पर गिर गए, तो ये हम जड़ भरत से सीखते हैं। इफेक्टिव का अर्थ है कि जो परिवर्तन हमारे अंदर कोई असर लाया है और हमारे वजह से दूसरों के अंदर असर ला रहा है वो परिवर्तन। और इसके ज्वलंत उदाहरण नारद मुनि है कि नारद मुनि, भागवत में वर्णन है कि नारद मुनि वो एक गंधर्व थे उपभरण, और वो एक ऐसे गंधर्व थे कि जिनको नियुक्त किया गया था भगवान का कीर्तन करने के लिए, परंतु वो केवल आज की भाषा में बोले तो फिल्मी गाने गा रहे थे। तो नारद मुनि उस वो उनकी अवस्था थी, वहां से उन्होंने जो परिवर्तन अपने अंदर लाया, फिर उन्होंने वो जो भक्ति वेदांती उनकी सेवा की, और फिर जब वो नारद मुनि बने तो इफेक्ट नारद मुनि के अंदर कैसा रहा, इफेक्टिव यदि हम कहें परिवर्तन हमारे अंदर, हम अपने आप को इफेक्टिव बनाएं, तो नारद मुनि किन किन को उन्होंने भगवान के भक्त बनाए, जैसे प्रहलाद महाराज, वाल्मीकि मुनि, ध्रुव महाराज, नलकुंवर मणिग्रीव, मृगारी, ये सारे जो नारद मुनि के कांटेक्ट में आकर उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया। तो यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि परिवर्तन, चेंज यदि हमें लाना है तो हमें इन उदाहरणों से क्या क्या सीखना है, टू हैव करेज टू चेंज, पुट हार्ड वर्क टू चेंज, गेट एब्जॉर्ब्ड टू चेंज, नेगेट द नेगेटिविटीज टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज, कीप गेजिंग how much am I changing for the pleasure of Krishna, and also see how effective is it, that change for myself and for others. So this is the complete definition of change. अब ये आज के हमारे session का अंतिम slide रहेगा। तो यहां पर चेंज थ्री वर्ड्स से इसकी शुरुआत होती है, बहुत महत्वपूर्ण ये थ्री वर्ड्स हैं, ये तीन शब्दों से चेंज की शुरुआत होती है, इन तीन शब्दों से चेंज या परिवर्तन हमारे अंदर बरकरार रहेगा, और यदि हमें कृष्ण प्रेम हासिल करना है तो उसके लिए भी ये तीन शब्द महत्वपूर्ण हैं। I am willing. I am willing for what? Change. ये हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जो अभिमान है वो हर समय बीच में रोड़ा डालता है। अभिमान क्या कहता है? No, I am not willing. और यदि कोई व्यक्ति नम्र है तो स्वाभाविक रूप से ये तीन शब्द उसके मुख से स्वाभाविक रूप से निकलते हैं, केवल मुख से नहीं हृदय से निकलते हैं, आई एम विलिंग। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये तीन शब्द मैंने कहां से लिए, तो मैं आपको एक 5 मिनट राधानाथ महाराज का एक लेक्चर दिखाऊंगा। और राधानाथ महाराज अपनी स्टोरी सुना रहे हैं कि वो कैसे जब वो अमेरिका से निकले भगवान की खोज में, अमेरिका से निकले उनके मित्र गैरी के साथ, तो दोनों निकले भगवान की खोज में। और जब वो इजिप्ट में थे जहां पर उनको वो आकाशवाणी जैसी सुनाई दी, दोनों को सुनाई दी, गैरी को भी सुनाई दी, महाराज को भी सुनाई दी। और क्या थी वो आकाशवाणी जहां पर महाराज को उस आकाशवाणी में कहा गया गो टू इंडिया। तो ये 5 मिनट का लेक्चर जो मैंने निकाला है इसके अंदर महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं ये देखिए, इसकी इसकी शुरुआत इस प्रकार से है। A voice that changed his life. कौन से मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं? चेंज। सो द वॉइस दैट चेंज्ड विच सेड टू महाराज गो टू इंडिया। गो टू इंडिया ये तीन शब्द थे। और महाराज ये लेक्चर में हम सुनेंगे अंत में महाराज ने कहा, महाराज के तीन शब्द क्या थे इसके रेसिप्रोकेशन में, I am willing। भगवान के तीन शब्द थे go to India, महाराज के तीन शब्द थे I am willing। So are you willing to see?
Our spiritual longings brought us to the point where we lived on the Greek island of Crete in a cave. We were roommates in a cave. It was a very nice cave. As far as caves go, it was a 5-star cave. It had kind of a high ceiling. It was a very nice cave. And every day I would climb a mountain before sunrise and meditate, pray, and study scriptures till sunset. And he would go down to the seaside, the Mediterranean Sea, to do the same thing. And after the sunset, we'd meet in the cave and we'd just share our realizations of the day. Should I continue?
Yes.
Thank you. Thank you. I'm really hoping it's there. So, one day, on this day, I was just feeling such deep longing for spiritual experience. I was crying and praying, God, show me the way. And in the midst of a beautiful sunset, I heard a voice. A voice that changed my entire life. A voice that shocked me, but gave me hope. A voice that put my life on the line between birth and death. A voice that put me in a situation where to follow it, I have to accept a whole new identity and leave everything behind. That voice spoke from within and said, go to India. I was wondering, I have no money. I can't ask my parents to help me with something they don't want me to do. And I don't know where India is. And I don't even have a map. But But I believe if I just keep hitchhiking east direction, someday I'll arrive in India. So I went down to the cave and I met with Gary. And I said, Gary, something amazing happened to me today. And Gary said to me, something amazing happened to me today. Tell me. He said, right at sunset, I heard a voice. I became very excited. I said, what did he say? He said, I was told, go to Israel. I said, what? Say that again. Where? He said, Israel, don't you believe me? Don't you believe me that I heard this voice? I said, I believe you, but he told me to go to India. There was silence. Maybe 20 minutes. I was looking at the stars. By that time it was dark. On that Greek island. And I remember looking up at the stars and talking to God. I didn't know who he was or where he was, but I believed he heard me. I said three words. I said, yes, I am willing.
Riva! Idol in his Radhanath Swami Maharaj ki! Grantharaj Shrimad Bhagavatam ki! तो मैं इसे ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि जो महाराज के शब्द हैं अंतिम तीन वर्ड्स जो महाराज क्या कहे आई एम विलिंग वो हमारे कानों में गूंजते रहे. किसी का कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज? जय श्रील प्रभुपाद की जय. तो अगले संडे को हम यहां से आगे बढ़ेंगे कि परिवर्तन जो है वो नम्रता का लक्षण है. विलिंगनेस इज अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी, अनविलिंगनेस इज अ साइन ऑफ फॉल्स ईगो. हरे कृष्णा.